ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को पीएम उदय योजना के एकल विंडो शिविर की अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 9,000 कफ सिरप की बोतलें और 1,80,000 नशीली गोलियां जब्त कर अवैध दवाओं के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस में 40-50% की कमी की गई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे। उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला तो आर्थिक क्रांति ला दी। देश में रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। उन्होंने साल में 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपए तय की। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन भी 2009 में उनके समय ही किया गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका को झुकना पड़ा और भारत की न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद भारत हथियारों के मामले में शक्तिशाली देश बनकर उभरा। वे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वे राज्यसभा के 33 साल तक सदस्य रहने के बाद इस साल अप्रैल में संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हुए। आज कई समाचार पत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में भाषण का अंश प्रकाशित किया है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआती करियर में पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। डॉक्टर सिंह 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक परिदृश्य को एक नया आयाम दिया। मनरेगा जैसी योजनाओं और आरटीआई और एनएफएससी जैसे कानूनों के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार से लेकर विनम्रता और बुद्धिमता के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका 3 दशक से अधिक का संसदीय सफर रहा। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। डॉक्टर सिंह को 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें न केवल उनकी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा के लिए बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा राष्ट्र शोक में है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है कि लोग किस तरह संघर्ष से उभरते हुए उपलब्धियों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब श्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने देश को आर्थिक स्थिति को नई दिशा प्रदान की। ये वो समय था जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज समस्त राष्ट्र के लिए दुख का समय है, क्योंकि देश उस नेता के लिए शोक मना रहा है जो मानवता की मूर्ति और शिष्टता का प्रतीक है, जिन्होंने समाज को प्रभावित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को एक नई दिशा प्रदान की थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले, बड़े अर्थशास्त्री, उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति के मामले में देश को वैश्विक मंच पर एक स्थान प्रदान किया।
एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो एक दूरदर्शी नेता थे। श्री सक्सेना ने दुख और अपूरणीय क्षति की इस घड़ी में श्री सिंह के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री सिंह के निधन से देश को क्षति पहुंची है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्र ने एक जाने माने राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध नेता को खो दिया है। बैठक में उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे, कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कल सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे देश ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक महान व्यक्तित्व खो दिया है। डॉ मिश्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बिताए यादगार पलों का स्मरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास पर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने वाली PM उदय योजना के एकल विंडो शिविर की अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि यह निर्णय इन शिविरों में जनता की भारी भागीदारी के मद्देनजर लिया गया है। कार्यालय ने बताया कि DDA द्वारा 30 नवंबर से 22 दिसंबर तक हर सप्ताहांत अनधिकृत कॉलोनियों में 10 केंद्रों पर यह शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में अभी तक 19,313 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,599 नए आवेदक थे। इस अवधि में 1,152 अधिकृत पर्चियां जारी की गई और 283 संपत्ति धारकों को रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक सौंपा गया। कार्यालय ने बताया कि उपराज्यपाल ने शिविरों की वन विंडो प्रणाली का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। इस पहल में बुराड़ी, राजनगर, मैदानगढ़ी, रोहिणी, मोहन गार्डन, बपरोला, संगम विहार, राजा विहार और आयानगर समेत कई अनधिकृत कॉलोनियों में शिविर लगाए गए। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल दिल्ली पुलिस के 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए। इनमें दिल्ली के 3 जिलों के पुलिस उपायुक्त और 4 जिलों के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने बताया कि पुलिस ने 9,000 कफ सिरप की बोतलें और 1,80,000 नशीली गोलियां यानी टैबलेट जब्त की हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ की कीमत आंकी गई है। श्री भाटिया ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि आरोपियों की खुदरा बिक्री का तरीका क्या था।
एक फैक्ट्री को बस्ट किया है बवाना के एरिया में, जहां पर ये लोग केमिकल्स के साथ जो कोडेन फास्फेट नाम का केमिकल है और साथ में एक और केमिकल मिलाकर कफ सिरप टाइप सिरप की शीशियां बना रहे थे, भर रहे थे, बोतलें बना रहे थे और इसको सप्लाई भी कर रहे थे। और 9,000 भरी हुई कफ सिरप की जो शीशियां हमें मिली हैं और साथ साथ 1,80,000 टेबलेट्स जो हमें मिली हैं, टोटल इनकी वैल्यू 1 करोड़ के करीब होगी मार्केट में।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि पावर परचेज अंडर एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी में 40-50% की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से भाजपा कार्यकर्ता लगातार पीपीएसी शुल्क के खिलाफ लड़ रहे थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से मिला और उनके हस्ताक्षर के बाद पीपीएसी शुल्क में काफी कमी कर दी गई है।
पीपीएसी चार्जेस के नाम पर एक मोटी वसूली दिल्ली के आम लोगों से की जा रही थी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और हमने डीआरसी को भी लेटर लिखा, माननीय उपराज्यपाल जी से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था जाकर। कल माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद पीपीएसी चार्जेस में 50-60% की कमी की गई है। ये पहली विजय जरूर है हमारी, लेकिन अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल भरते हैं, उनके बिलों में अब भारी गिरावट आएगी। जो 40% टैक्स लिया जा रहा था, वो अब 18-20% रह जाएगा।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पीएम अभीम को राजधानी में लागू करने का आदेश देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि जब राज्य सरकार विफल होती है तो अदालत को जनहित में हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुश्री स्वराज ने कहा कि पीएम अभीम योजना एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के लिए धन भी आवंटित किया गया है। सुश्री स्वराज ने कहा कि द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके कारण दिल्ली का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उन्नत नहीं हो सका। पंजाब के भटिंडा में एक बस के पुल से टकराने के बाद नाले में गिर जाने से 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये बस तलवंडी साबो से आ रही थी। भटिंडा के उपायुक्त शौकत अहमद पर्रे ने बताया कि बस में सफर कर रहे 26 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बठिंडा में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना से मैं व्यथित हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ इलाकों में आज तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कोहरा और शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। डॉ. मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को पीएम उदय योजना के एकल विंडो शिविर की अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 9000 कफ सिरप की बोतलें और 1,80,000 नशीली गोलियां जब्त कर अवैध दवाओं की एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पावर परचेज अंडर एडजस्टमेंट चार्जेस में 40-50% की कमी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।